ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन, जय राधा माधव। बिहारी रे राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी रे राधा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
सभी लोग बोलिए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा।
राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की भागवतम की कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया श्रवण करिएगा। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की भागवतम की कक्षा में। सो आज हम श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के ग्यारहवें अध्याय श्लोक संख्या 26, 27 और 28 पर आज चर्चा करेंगे। 26 और 27 में क्योंकि तात्पर्य नहीं है तो इसको केवल हम श्रवण करेंगे और 28वां श्लोक हम दोहराएंगे और उसका अनुवाद दोहरा करके तात्पर्य श्रवण करेंगे। तो 26वां श्लोक है, कृपया श्रवण करिए। सम्मार्जन उपले पाभ्याम गृह मंडन वर्तने स्वयं चा मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिच्छदा कामे उच्चवचे साध्वी प्रचक्षेण दमेन च वाक्यै सत्यै प्रियै प्रेम्णा काले काले भजेत पतिम्। अनुवाद श्रवण करें। पतिव्रता साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हो, सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने, अपना घर बुहारे तथा उसे पानी तथा अन्य तरल पदार्थों से स्वच्छ बनाए, जिससे सारा घर और जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्र करनी चाहिए और घर को अगरू तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तथा मधुर वचन बोलकर काल तथा परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेम पूर्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। श्लोक संख्या 28 कृपया पीछे पीछे दोहराइए। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं तु अपतितं भजे। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं तु अपतिं भजे। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा अप्रमत्तः शुचिः स्निग्धा पतिं तु अपतिं भजे। पतिं तु अपतितं भजेत। धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा सत्यवा अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तु अपतिं भजे। संतुष्टा लोलुपा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तु अपतितं भजे। माताजी संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाग् अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं त्वा पतितं भजे। संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तु अपतितं भजे। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया पीछे पीछे दोहराएं। संतुष्टा सदैव तुष्ट अलोलुपा लालची हुए बिना दक्षा सेवा करने में पटु धर्मज्ञा धार्मिक नियमों से पूर्णतया परिचित प्रिया सुहावना सत्य सत्यनिष्ठ वाक बोलने में अप्रमत्ता अपने पति की सेवा में दत्त चित शुचिहि सदैव स्वच्छ तथा शुद्ध स्निग्धा स्नेहिल पतिम पति को तो लेकिन अपतितम जो पतित नहीं है भजे पूजा करे। अनुवाद कृपया पीछे दोहराएं। साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए और धार्मिक नियमों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए। उसे मधुर तथा सत्य भाषिणी होना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो। तात्पर्य कृपया श्रवण करें। धर्म के अधिकारी याज्ञवल्क्य के अनुसार आदेशानुसार अशुद्धे संप्रतिक्षो ही महापातक दूषितः जो 10 विधा संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं किया गया होता उसे महान पाप कर्मों के फलों से दूषित माना जाता है। किंतु भगवत गीता में भगवान कहते हैं नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः जो दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते वे अधम हैं। नराधम का अर्थ है अभक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है यही भजे सही बड़ा अभक्त हीन छार जो भी भक्त होता है वह पाप रहित है किंतु जो भक्त नहीं है वह अत्यंत पतित तथा नीच है। अतएव यह संस्तुति की गई त्रता कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगति ना करे। पतित पति वह है जो 4 प्रकार के पाप कर्म करता है यथा अवैध यौन मांसाहार द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। विशेष रूप से जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरणागत नहीं होता वह कलुषित समझा जाता है। इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न होते हैं किंतु साध्वी स्त्री पतित पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। यदि उसका पति पतित हो तो संस्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे। किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह फिर से विवाह कर ले और इस तरह वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। यदि दुर्भाग्यवश कोई साध्वी स्त्री किसी पतित पति से ब्याही जाती है तो उसे पति से विलग रहना चाहिए। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है यदि पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी ना हो। निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहां वर्णित समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए, तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। हरे कृष्णा। सो आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु जी लोगों की तरफ से हरि बोल बोला गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह श्लोक केवल माता जी के लिए है। यह श्लोक प्रभु जी लोगों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, प्रैक्टिकल है, जितना कि माता जी इसके लिए। क्योंकि भागवतम दोनों के लिए है, एक जीवात्मा के लिए है और एक जीवात्मा पुरुष भी है, पुरुष शरीर में भी है और स्त्री शरीर में भी है। तो आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में प्रमुख रूप से दो भाग में वर्णन हुआ है। पहला जो भाग है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं भगवान की भक्ति का महत्व, और दूसरा जो हिस्सा है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं साध्वी स्त्री और साधु पुरुष दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो हम इसको चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी श्रवण कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो ये अध्याय है अध्याय 11, और अध्याय 11 का शीर्षक है पूर्ण समाज चातुर्वर्णम। चातुर्वर्ण, चार वर्ण जिससे मिल करके पूर्ण समाज बनता है, उसके बारे में आज के इस अध्याय में चर्चा की जा रही है। तो चर्चा करने से पहले मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप सब अपनी कृपा दें। कई वरिष्ठ वैष्णव यहां पर हैं, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, आप सब से प्रार्थना करता हूं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें। कृष्ण बलराम से प्रार्थना करें कि मैं भागवत को यथारूप आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। सो इस अध्याय 11 में पूर्ण समाज का वर्णन किया गया है। तो ये अध्याय की जो शुरुआत हुई है, सातवां स्कंद जो है, ये प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन है। प्रहलाद महाराज ने बताया, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, प्रहलाद महाराज का जीवन, कौ महाराज आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतामिहा दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है इस सातवें स्कंद में। और किस प्रकार प्रहलाद महाराज जो थे, उन्होंने डायरेक्ट भगवान का दर्शन प्राप्त किया और फिर कथा जो है आगे बढ़ती है। तो अध्याय 11 तक आते आते ये जो कथा है, ये महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। कौन? नारद मुनि। नारद मुनि ये कथा जो है युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। तो अब जब कथा सुन ली प्रहलाद महाराज की, तो आगे बढ़ते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना करी नारद मुनि से कि मनुष्य के वास्तविक धर्म तथा उस वर्णाश्रम के विशेष लक्षणों के बारे में बताएं। कौन सा वर्णाश्रम? जिससे मानवीय सभ्यता के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सके। मानवीय स्तर के उच्चतम स्तर को, मानवीय सभ्यता के अगर उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। जन्म के आधार पर जो समाज विभाजित किया गया है, उस वर्ण आश्रम का यहां पर चर्चा किया जा रहा है। तो जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि आप बताएं, तो नारद मुनि तुरंत ये कहते हैं कि मैं जो भी कुछ यहां पर आपको बताने जा रहा हूं अब धर्म के सिद्धांतों के बारे में, वो साक्षात जो नारायण ने बताया है, साक्षात जो नारायण ने बताया है धर्म के सिद्धांतों को, उनको मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो नारद मुनि भी देखिए यहां पर एज इट इज बताने जा रहे हैं, यथारूप। नारद मुनि मन घड़न तरीके से नहीं बताने जा रहे हैं। नारद मुनि भी जैसा नारायण ने बताया वैसा ही यहां पर बताने जा रहे हैं। नारद मुनि बताते हैं, जैसे यमराज जी भागवतम के छठे स्कंद में है ना, जब अजामिल की कथा आती है, तो वहां पर जब यमदूत यमराज के पास पूछने जाते हैं, यमराज जी के पास, कि बताएं धर्म का सिद्धांत क्या है, हमारा वहां पर विष्णु दूतों के साथ वाद विवाद हुआ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि असली धर्म का सिद्धांत क्या है, तब वहां पर जो होते हैं यमराज जी, वो वहां पर बताते हैं कि धर्म का सिद्धांत किस प्रकार से हमें समझना चाहिए। क्या बताते हैं? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। मतलब क्या कि धार्मिक सिद्धांत प्रदान करने के लिए नारायण जो है वो सर्वोच्च अधिकारी हैं। तो धर्म के सिद्धांत जो स्वयं नारायण ने बताए हैं, उन सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उसके बाद धर्म के सिद्धांत आगे बताते हुए नारद मुनि बढ़ते हैं और बताते हैं कि श्लोका नंबर सात, सातवें नंबर श्लोक में नारद मुनि ने बताया कि कैसे धर्म के सिद्धांत कार्य करते हैं, है ना। समस्त धर्मों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति है। तो युधिष्ठिर महाराज को अब धर्म के सिद्धांत जो है बताने जा रहे हैं, वहां पर नारद मुनि बता रहे हैं कि धर्म के सिद्धांत ये हैं। और उसी जगह पर शिला प्रभुपाद जी भी बताते हैं, क्या श्रीमद भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को कोट करते हैं और बताते हैं क्या, सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। क्या धार्मिक नियमों का लक्ष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करना सीखना है। देखिए, धार्मिक नियमों का सिद्धांत आपस में लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, तुम इस धर्म के हो तुम उस धर्म के हो, ये तो अज्ञानी लोगों के लक्षण होते हैं। अज्ञानी लोग लड़ते हैं आपस में, क्यों क्यों लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें असली धर्म के सिद्धांत तो पता ही नहीं है। तो असली धर्म के सिद्धांत, धर्म के नियमों का लक्ष्य क्या होता है, देखिए हर चीज के पीछे लक्ष्य पता होना चाहिए। भागवतम कक्षा में बैठने का लक्ष्य क्या है, प्रसादम का फ्री कूपन मिलेगा। भागवतम कक्षा में बैठने का नियम क्यों है, बोला गया है इसलिए। नहीं, हर चीज के पीछे हमें उसका लक्ष्य जरूर पता होना चाहिए, है ना। जैसे क्या बताया जाता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो प्रयोजन जरूर पता होना चाहिए, है कि नहीं। किस प्रयोजन से हम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, भागवतम कक्षा में क्यों बैठते हैं, क्यों प्रभुपाद जी ने सेट किया इसलिए, ये एक कारण है। और क्या कारण है, श्रीमद् भागवतम में खुद कहा गया है क्या, नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करनी है। तो भागवत सुन करके हम भागवत की सेवा नित्य करते हैं, सुबह सुबह 8 से 9 डेली एक घंटा भागवत श्रवण करना है, ये लक्ष्य है। क्योंकि भागवत के बारे में बताया गया है कि भागवत डेली श्रवण करना चाहिए, भागवत की सेवा करनी चाहिए, हमारे आचार्यों ने बताया है आचार्य मार्गानुगमनम। तो हर चीज के पीछे हमें लक्ष्य पता होना चाहिए, अगर लक्ष्य नहीं पता है तो ये वर्तमान मानव सभ्यता की तरह हो जाएगा। वर्तमान जो मानव सभ्यता है इसमें सब लोग भाग रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। पूछा जाए प्रभु कहां जा रहे हैं, मधुसूदन प्रभु कहां जाना है, मधुसूदन प्रभु कहेंगे प्रभु जी पता नहीं है, बस गाड़ी में बैठे हैं 100 की स्पीड में भगा रहे हैं, आगे जाना कहां है पता नहीं, बस चल रहे हैं। लक्ष्य अगर पता नहीं होगा तो आगे खाई भी हो सकती है। मानव सभ्यता आजकल इसी प्रकार से है, अंधा यथान दे उपगीय माना, अंधा अंधी दौड़ चल रही है, किसी लक्ष्य की किसी को कोई जानकारी नहीं है क्या है जीवन का लक्ष्य, बस चलते जा रहे हैं। तो इसलिए धर्म के नियमों का लक्ष्य जो है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। धर्म के नियमों का लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा, बोलिए भगवान की सेवा, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, ये है धर्म के नियमों का लक्ष्य। यह सेवा अहेतुकी होनी चाहिए तथा भौतिक स्थितियों के रोके जाने पर रुकनी नहीं चाहिए यह सेवा, तथा मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकता है। तभी सुखी हो सकेगा जब इस अहेतुकी भक्ति अहेतुकी सेवा को करेगा मानव समाज, तभी सुखी हो पाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं, तभी श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, क्या बताते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि एकांतिक पंचरात्रिक विधिं बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्तात एव कल्पते। क्या बता रहे हैं, आशय यह है कि भक्त बनने के लिए मनुष्य को श्रुति तथा स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। श्रुति स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, हमें भी नियम दिए गए, श्री प्रभुपाद जी ने नियम दिया, क्या 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, दिया गया नियम दिया गया सबको, आई होप आप सब जानते होंगे। तो नियमों का पालन करने के लिए दिया गया, उसे पुराणों तथा पांचरात्रिक विधि के नियमों को मानना चाहिए। पांचरात्रिक विधि के नियमों को मानना चाहिए, पुराणों में दिए गए नियमों को मानना चाहिए। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना ना तो कोई शुद्ध भक्त बन सकता है और ना भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न ही नहीं उठता, भक्ति के बिना धर्म के सिद्धांतों का कोई फायदा नहीं है। ये केवल क्या होगा, मानव निर्मित धर्म। इसीलिए जीव का धर्म बताया गया है। क्या है जीव का धर्म? सनातन धर्म। सनातन मतलब जीव क्योंकि सनातन है, उस जीव का जो धर्म है वो भी क्या है, सनातन है। और सनातन धर्म का मतलब क्या है, क्या है सनातन धर्म? भगवान की सेवा, भगवान की प्रेमा भक्ति। बाकी जो भी धर्म बनाए गए हैं ये धर्म क्या है, मानव निर्मित धर्म। मानव निर्मित, मानव ने बनाया। जैसे हम श्रीमद् भागवत भगवद गीता पढ़ते हैं तो वहां पर भी किसी अन्य धर्म का नाम नहीं देखने को मिलता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन नाम नहीं मिलता है कोई भी। क्यों? क्योंकि भगवान ने इन धर्मों का जन्म तो भगवान के द्वारा नहीं हुआ है। भगवान ने क्या बताया, जीव का धर्म क्या है, सनातन धर्म। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर नित्य दास, यह है जीव का असली धर्म। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में ईश्वर केंद्र बिंदु रहता है। ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के केंद्र बिंदु कौन है, ईश्वर भगवान, भगवान श्री कृष्ण है केंद्र बिंदु। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं काम और प्रेम में क्या अंतर है, यही अंतर है काम और प्रेम में। जब हमारी सारी क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु भगवान होंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार कहे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो इस प्रकार से ईश्वर केंद्र बिंदु होने चाहिए हमारे सारे क्रियाकलापों का। भागवतम क्लास में क्यों बैठ रहे हैं, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, है कि नहीं। प्रसाद क्यों पा रहे हैं, पेट भरना तो एक तुष्टि पुष्टि ये तो एक कारण है, लेकिन वो भगवान का प्रसाद है। क्या है ये, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे। इसलिए प्रार्थना जरूर पढ़ना चाहिए, महाप्रसादे गोविंदे, वो भाव आता है, नहीं तो क्या लगेगा, पनीर। बताते हैं इस्कॉन में पनीर की नदियां बहती हैं पनीर की नदियां बहती हैं, हर फेस्टिवल में पनीर। फेस्टिवल बिना पनीर के अपूर्ण है लेकिन वो पनीर प्रसाद है, प्रसाद। सही अन्ना अमृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, है कि नहीं। ये भगवान का साक्षात कृपा है प्रसाद, तो उसको अगर उस भाव से नहीं लेंगे तो उस प्रसाद को खाने से फिर होड़ल जाना पड़ेगा उस प्रसाद को खा के फिर अपच हो जाता है, फिर जाना पड़ेगा होड़ल नागलोई। हमारे कई भक्त जो है होटल जाते हैं, होटल में दवा वैद्य जी रहते हैं, वो दवा देते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के सिद्धांतों का, भक्ति के नियमों का पालन करने के केंद्र बिंदु कौन होने चाहिए, ईश्वर भगवान, भगवान की प्रसन्नता। ठीक है, इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह भक्ति भावना से प्रायः रहित है। जो भी कुछ धर्म के नाम पर हो रहा है भक्ति से रहित है, वो भक्ति से रहित है। अतएव श्रीमद् भागवत के निर्णय के अनुसार वह निंदनीय है। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, धर्म के जो भी नियम पालन हो रहे हैं सब क्या है, निंदनीय है। भक्ति के बिना तथा कथित धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवचना है, मात्र प्रवचना। इसके बाद नारद मुनि 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक बताते हैं 30 गुण। 30 गुणों के बारे में बताते हैं जिनको सबको पालन करना चाहिए। देखिए कई भागवत में, भगवद गीता में आप कई जगहों पर देखेंगे कई सारे बताए जाते हैं ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, इन गुणों से बचना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय है आसुरी और देवी स्वभाव, 16वां अध्याय, वहां पर बताया गया है। देखिए ये 26 क्वालिटी, 26 गुण हैं जो कि क्या होने चाहिए, देवताओं के गुण होते हैं, ये हमारे अंदर होने चाहिए, है कि नहीं। फिर 6 चीजें बताई गई जो कि आसुरी हैं, इनसे बचना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करता है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उनको साइड में रख के अपने मन घड़न तरीके से कार्य करता है वो क्या होगा, न सिद्धिम अवापनोति, न सिद्धि प्राप्त होगी, न सुखम न पराम गतिम, न ही सुख की प्राप्त होगी, सुख की न ही परम गति की प्राप्ति होगी। तो सामान्य रूप से देखा जाए, अगर सिद्धांत की बात की जाए, तो इन सभी धर्मों का पालन करने के बाद भी जीव प्रसन्न क्यों नहीं हो पा रहा है, सुख क्यों नहीं मिल रहा है जीवात्मा को, सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और धर्म के सिद्धांतों का मूल लक्ष्य जो है वो क्या है, क्या है, भगवान केंद्र बिंदु होने चाहिए, सारे क्रियाकलापों के केंद्र बिंदु कौन होने चाहिए, भगवान होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, 8 से 12 श्लोक जहां पर प्रभुपाद, जहां पर नारद मुनि 30 गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सभी गुण क्या हमें प्रयास करना चाहिए इन गुणों को अर्जित करने का, या फिर हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति करने का, क्या प्रयास करना चाहिए, चलिए कोई हाथ उठा के बताइए। 2 ऑप्शन है, यस प्रभु, भक्ति करने का। क्यों प्रभु, गुण का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए, माता जी की तरफ से गुणों को अर्जित करने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ माता जी, पीछे पीछे पीछे, हाँ हाँ, श्रीमद भागवतम के 5वें स्कंद में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें बताया गया है क्या, यस्यास्ति भक्तिर भगवती यकिंचनः सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। मतलब क्या, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जब तक हम अकिंचन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे, अगर भक्ति करते हैं तो क्या होगा, सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरः, सुर मतलब देवताओं के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा, जो हरि के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनको कहां से गुण आएंगे, वो तो केवल अपने मनोरथे नास्ति धावतो बही, मन जैसा जैसा कहता जाता है, मनोवृत्ति मन घड़न तरीके से कार्य करते जाते हैं। तो इसलिए क्या हमें गुणों के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं, भागवत का सिद्धांत यह है कि हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, अगर हम भक्ति करेंगे तो ये सारे गुण हमारे अंदर अपने आप प्रकट होते जाएंगे, गुणों के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे 13 श्लोक से, 13वें नंबर श्लोक से 24वें नंबर श्लोक में बताया गया है, 4 वर्णों के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है, 4 वर्ण जितने भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सभी के नियमों के बारे में आगे के श्लोकों में बताया गया है। ठीक है, आज का जो श्लोक है, कल का जो श्लोक था, श्लोक नंबर 25, तो हमें कुछ भक्त बता रहे थे कल, बहुत ही डिटेल में चर्चा हुई है कल, कल कौन कौन थे भागवतम कक्षा में, हाँ, तो हमें कुछ भक्त बता रहे थे कि कल बहुत वर्णन किया गया है, 25वें श्लोक का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, तो हम आज उसको ज्यादा टच नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आपको बताएंगे। 25वें श्लोक में बताया गया था कि पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना, तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय हैं। तो पतिव्रता स्त्री के 4 नियम जो है उनको पालन करना चाहिए, वो पिछले श्लोक में बताया गया। शिला प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य को वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं क्या, क्या कि स्त्री को इन सभी नियमों के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब किसका महत्व बता रहे हैं, शिक्षा का महत्व बता रहे हैं, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर न्यू भक्ता बैठे हुए हैं, न्यू भक्ता ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में आना चाह रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में जाना चाह रहे हैं उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वानप्रस्थी में जा रहे हैं उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, संन्यास में जा रहे हैं उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के वो व्यक्ति नियमों का पालन करना सीख नहीं पाएगा। इसलिए नियमों का पालन करना अगर उचित ढंग से हमें सीखना है तो शिक्षा ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते थे क्या कि हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं ये मात्र मंदिर नहीं है, ये सब क्या है, एक तरीके से शिक्षण संस्थान है, यहां शिक्षा दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई नई नई माता जी आती हैं तो सब माता जी अपने साथ रखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, देखो ऐसे रहो, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे करो, सारा ट्रेनिंग देते हैं, साथ में ऐसे रहना है। कोई प्रभु आते हैं तो प्रभु के साथ रहते हैं, सीखते हैं, ऐसे रहो, ऐसे धोती पहनो, ऐसे तिलक लगाओ, सब साथ में सीख जाते हैं रहते रहते। तो ट्रेनिंग, शिक्षा का बहुत महत्व बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आज के श्लोक का जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरा पक्ष जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे पक्ष में बताया गया है कि कैसे साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। कैसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो, जो भक्त ना हो, नियमों का पालन ना करे। बहुत ही कठोर स्टेटमेंट है ये, बहुत ही कठोर स्टेटमेंट है। इस जो सिद्धांत है इसको जीवन में कैसे अपनाया जाए, इसके लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। अगर गुरु के निर्देशन में हम इन सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हो सकता है गलत स्टेप उठा लें और फिर भक्ति करना भी मुश्किल हो जाए। कई घरों में देखा जाता है, जैसे हम लोग प्रमुख रूप से यूथ प्रीचिंग में हैं। यूथ मतलब नए, आप मान के चलिए 18 साल से 30 साल के लड़कों को हम लोग प्रचार करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि हर स्तर पर समस्याएं आती हैं, चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे गृहस्थी में हों, चाहे वानप्रस्थी में हों, हर स्तर पर समस्याएं आती हैं। अब यंग कोई लड़का आता है, जब करना सीखता है, घर पर जाता है, माता पिता कहते हैं तो साधु बनेगा, माला करके साधु बनेगा, मतलब माता पिता क्या चाहते हैं, वो साधु ना बने तो क्या बने, चोर बने, बताइए क्या बने, चोर बने। साधु बनने के लिए, बनवाने के लिए आजकल तैयार नहीं है, चोर बन जाए वो हमें मंजूर है, इन साधु नहीं बनना चाहिए। इसी प्रकार से गृहस्थी आश्रम में हम लोग देखते हैं क्या कि कई बार जो है माता जी जो है भक्त होती हैं, वो भक्ति के नियमों का पालन करना चाहती हैं, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, वो क्या, वो अभक्त होते हैं, वो उनकी भक्ति से उनको दिक्कत होती है। कई बार प्रभु जी भक्त होते हैं, माता जी अभक्त होती हैं, तो प्रभु जी की भक्ति से माता जी को दिक्कत होती है। तो इसलिए सिद्धांत यहां पर यह है कि दोनों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है शुरुआत से। शुरुआत से अगर शिक्षा मिलेगी तो आगे चल करके जीवन बहुत आसान होगा। इसीलिए देखिए, पहले वैदिक कल्चर में अगर देखा जाए, शास्त्रों में हम वर्णन आता है क्या, गुरुकुल सिस्टम बहुत आवश्यक है। गुरुकुल, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोरहितम आचरण दासवत नीच, उसका पूरा ट्रेनिंग होता है ब्रह्मचारी आश्रम में। फिर वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बाद अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका क्या है, सिद्धांत क्लियर होता है कि हमें रहना भी है तो भक्ति करनी है, पत्नी भी आएगी तो उसको भी भक्ति में लगाएगा। इसलिए दोनों को ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। माताओं का भी ट्रेनिंग होता है अलग से। माताओं का ट्रेनिंग कैसा होता है, जो लड़की है उसकी माता उसको ट्रेनिंग देती है कि ऐसे आपको रहना है, ऐसे घर के कार्य करने हैं, ऐसे आपको बच्चों की सुरक्षा करनी है, उनका लालन पालन करना है, गृहस्थी को संभालना है, तो इस प्रकार से उनकी जो है ट्रेनिंग माता के द्वारा होती है और घर की जो वरिष्ठ स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा की जाती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का बहुत महत्व है, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया है क्या, निष्कर्ष, निष्कर्ष अंत में यह निकाला गया है क्या कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहां वर्णित समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए। देखिए साध्वी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। साध्वी का क्या मतलब है, हमारे श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में कई साध्वी स्त्रियों का वर्णन आता है। कुंती महारानी, कुंती महारानी तो पूरा वर्णन किया है उन्होंने, कैसे कैसे अपने मन का जो उद्गार है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवतम में। ये होता है साध्वी स्त्री का लक्षण। एक दो लक्षण बताएं अगर कुंती महारानी का, तो क्या भगवान जब युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्वारका वापस जा रहे थे तो कुंती महारानी क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, विपदा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। जब तक हमारे पास विपदाएं थीं तब तक आप हमारे साथ थे, अब विपदाएं समाप्त हो गई हैं तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आपसे तो प्रार्थना यही है हमारे ऊपर हमेशा विपदाएं बनी रहें। क्या कोई स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसी कामना नहीं करेगा कि हमारे ऊपर विपदाएं बनी रहें? लोग तो चाहते हैं कि जीवन में खुशी हो, थोड़ा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये प्रार्थना होती है आजकल। लेकिन शास्त्र क्या प्रार्थना बता रहे हैं, देखिए कुंती महारानी साध्वी स्त्री क्या प्रार्थना करने के लिए बता रही हैं कि विपदाएं आती रहे ताकि हम और ज्यादा आपको स्मरण करते रहे। साध्वी स्त्री, और कहां है साध्वी स्त्री? श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, किसका? माता देवहूति का। अपने पुत्र से पूछ रही है कि मुझे बताइए भक्ति के सिद्धांत क्या है, कैसे भक्ति के नियमों का पालन किया जाए। पुत्र बता रहे हैं क्या? आसक्ति के बारे में बताते हैं कि आसक्ति जो है ये बड़ी खतरनाक होती है कि नहीं? यही आसक्ति अगर साधुओं से होती है, सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावर्तम प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। ये जो आसक्ति है ये बड़ी खतरनाक होती है, जीव को फंसा करके रखती है। एक पुत्र अपनी माता को बता रहा है, देखिए, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावर्तम। फिर साधु के लक्षण बताते हैं, तो माता ये साध्वी स्त्री है, देखिए माता देवहूति, महाभारत से वर्णन आता है, महाभारत से कुंती महारानी है। और किसका वर्णन आता है? महाभारत से ही वर्णन आता है, एक और माता गांधारी, गांधारी जी का वर्णन आता है। देखिए साध्वी स्त्री, पतिव्रता स्त्री, पति का जो है नेत्र नहीं है तो खुद भी जो है हम नहीं देखेंगे। तो आज मैं सुबह ही परम पूजनीय जनार्दन स्वामी महाराज जी से प्रार्थना कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ बताऊं भागवतम से। तो उन्होंने बताया कि इन चरित्रों का वर्णन करिएगा, साथ ही साथ बताइएगा कि कैसे साध्वी स्त्री जो होती है वो श्रृंगार भी अगर करती है तो किसके लिए? पति के लिए, पति है ना। जब पति नहीं है अगर सामने तो वो श्रृंगार भी नहीं करती है। ये साध्वी स्त्री, पतिव्रता स्त्री के लक्षण होते हैं। और अंत में अगर देखा जाए सिद्धांत, तो सब तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। हाँ, पति को भी प्रसन्न कर रहे हैं किस लिए? क्योंकि पति भक्त है और वो हमें भक्ति में और लगाएगा। तो इस प्रकार से पति और पत्नी के दोनों के नियम बताए गए हैं, कैसे दोनों को भक्ति में युक्त होना चाहिए, तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, तभी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी, अन्यथा उन्नति नहीं हो पाएगी। ठीक है कि नहीं? अगला जो श्लोक है, कल जो श्लोक होगा उसमें बताया जाएगा, जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। तो साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श होती है। साध्वी स्त्री मतलब लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता मतलब क्या? जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है क्या, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां जो हैं भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया, केवल स्त्रियों के लिए नहीं है श्लोक, पुरुष प्रभु जी लोगों के लिए भी है कि प्रभु भी कैसे होने चाहिए। केवल ऐसे ही नहीं, केवल माता जी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप हमारी सेवा करें, हम चाहे जो भी करें, हम उड़ता पंछी बहता पानी है, आप हमारी सेवा करते रहे, नहीं ऐसा नहीं है। प्रभु जी लोगों के भी गुण बताए गए हैं क्या, चार नियम पालन करें, भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कोई नियम नहीं पालन करेंगे लेकिन भागवत कह रहा है इसलिए तुम नियम पालन करो, ऐसा नहीं। भागवतम का आश्रय लेकर के हम इन नियमों का पालन करने से नहीं बच सकते। ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों का सहयोग परस्पर बहुत जरूरी है गृहस्थ आश्रम को अच्छे से चलाने के लिए। तो प्रभु जी के भी गुण बताए गए हैं, देखिए चार नियम पालन करना चाहिए। अब यथा अवैध यौन मांसाहार द्युत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन इससे बचना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होना चाहिए। अगर वो शरणागत भक्त नहीं है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है अपनी पत्नी से कि वो मेरे शरणागत होगी, है कि नहीं। सब कहते हैं सीता राम जैसी जोड़ी होनी चाहिए, तो सीता जी के लक्षण, राम जी के लक्षण, दोनों के लक्षण होने चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत बनाते हैं तो भगवत धाम जाना तय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अंतिम 3 मिनट बचे हुए हैं। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, कुछ आनंद आया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। यस प्रभु जी, अभी कक्षा समाप्त नहीं हुई, अभी प्रसाद शुरू नहीं हुआ है। यस प्रभु जी,
हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद।
जो जा भी रहे हैं प्लीज शोर मत करें कृपा करके।
जैसे आखिरी पार्ट था जो आपने बताया, और प्रभुपाद भी लिख रहे हैं और उसमें बड़े क्लियरली लिख रहे हैं, लेकिन जैसे आपने उदाहरण दिया गांधारी का, एक पतिव्रता के रूप में बताया, लेकिन गांधारी के पति वो एक्सटर्नली तो नहीं दिखते ना भक्त, तो किस तरह से आगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। रावण की पत्नी मंदोदरी, उन्होंने भी कभी अपने पति को छोड़ा नहीं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, तो किस तरह से समझा जाए इस बात को।
देखिए, अगर बात करें धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र है ना, क्या प्रश्न ये है प्रभु जी का, प्रश्न ये है कि हमने गांधारी का उदाहरण दिया, तो गांधारी के जो पति हैं, हाँ कौन, धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र जी तो भक्त नहीं थे। एक्सटर्नली देखा जाए, बाहरी रूप से देखा जाए तो भक्त नहीं थे, पता नहीं 4 नियम का पालन करते भी थे कि नहीं करते थे, भगवान के शरणागत थे भी कि नहीं थे। हाँ, वो तो उल्टा भगवान के अगेंस्ट भी टीम में थे, तो कैसे इसको समझा जाए। और उदाहरण दे रहे हैं मंदोदरी का, हाँ, मंदोदरी के पति रावण है कि नहीं, एक्सटर्नली। तो इसलिए एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों देखना चाहिए। अगर वो भक्त नहीं थे, भगवान की लीला में हिस्सा कैसे ले रहे हैं, भगवान की लीला में भाग ले रहे हैं, भक्त हैं, है कि नहीं। कई बार हम संस्थाओं में भी देखते हैं, कई बार हम संस्थाओं में भी देखते हैं, अपनी संस्था में देखते हैं कि धृतराष्ट्र चरित्र और रावण चरित्र दोनों दिखाई देता है लेकिन वो 4 नियम का पालन भी करते हैं और भगवान के शरणागत भी होते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से एक्सटर्नली तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरनली हमें देखना चाहिए, अंदर से भाव देखना चाहिए। ठीक है, अंदर से भाव देखेंगे तो धृतराष्ट्र का उदाहरण तो सफल है, अंत में जाकर के तो उन्होंने भी भगवान की भक्ति करी और भगवान के पास गए, है ना, और भगवान के दर्शन करते थे। बहुत भाग्यशाली होंगे जो भगवान के दर्शन किए, भक्ति ही है जो भगवान के दर्शन, हमें क्यों नहीं होते, हमारे साथ भगवान क्यों नहीं आके वार्तालाप करते। अभी उतने उस लेवल की शरणागति और उस नियम का नियम, उस तरह का नियम पालन अभी नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था जी। हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न, अच्छा इधर, हाँ माता जी की तरफ से एक ले लें। यस माता जी, माइक दे दो मधुसूदन को।
हरे कृष्णा प्रभु जी, गांधारी तो ऐसा पतिव्रता के लिए तो अपना आंख बांध लिया, लेकिन उसका बच्चा लोगों के लिए ना सही तरीके से उसको पालन पोषण नहीं कर पाया है, इसलिए तो दुर्योधन आदि लोग तो इतना तो भगवान का एगेंस्ट हो गया। ये इसमें इसका बारे में आपका क्या विचार है, वो थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए।
इसलिए गांधारी की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, गांधारी की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी, इस कारण वो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाए। इसलिए शिक्षा ट्रेनिंग का बहुत महत्व है, इसलिए आप सब छोटी माता जी इसको अच्छे से शिक्षा दीजिए, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, कोई आएगा ट्रेनिंग देगा, नहीं आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, जो नए भक्त जुड़े उनको ट्रेनिंग देना अच्छे से, हर चीज का छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना जिम्मेदारी बनती है। तो गांधारी क्योंकि ट्रेंड नहीं थी, इस कारण से समस्या आ गई, अपने बच्चों को ही ट्रेनिंग नहीं दे पाई। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी लास्ट प्रश्न, प्रभु जी का माइक दे दो प्रभु जी। जी प्रभु जी अंतिम प्रश्न।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। लेकिन प्रभु जी एक प्रश्न का अनुत्तरित रह गया, जैसे आपने बोला कि जिनके पति मान लीजिए भक्त नहीं है तो माता जी को सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज के समाज में देखा जाए तो हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो बहुत सारे समस्याएं ऐसी होती हैं कि माता जी भक्ति करती हैं लेकिन प्रभु जी भक्ति नहीं करते। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी की प्रॉपर्टी के अनुसार यदि कहा जाए कि उनकी सेवा नहीं करनी है तो फिर तो घर में तो बहुत तांडव हो जाएगा, फिर कैसे होगा ये, तो इस पर आप जरा बताइए।
कैसी भक्ति, काम चलाओ भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। भगवान भी जिम्मेदारी तभी लेते हैं जब अनन्य भक्ति करी जाए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य चेता सततम् यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्था नित्युक्तस्य योगिनः। अनन्य भक्ति की यहां पर बात करी जा रही है, केवल भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। दो माला, चार माला, आठ माला, दस माला, किसी किसी नाम नाम, वो वाला भक्ति नहीं। कैसा भक्ति, अनन्य भक्ति करनी चाहिए तब हो पाएगा, अन्यथा अन्यथा तो किसी भी आश्रम में बड़ी समस्या है। ब्रह्मचारी अगर मंदिर में रहता है फिर भी अगर माला जब ध्यान से नहीं करता है, भक्ति ध्यान से नहीं करता है, जीवन में समस्या है। ठीक है कि नहीं, वो घर छोड़ करके भी उसको घर की याद आती रहती है कि नहीं। वानप्रस्थी हो गया है, सन्यासी हो गया है, अगर ध्यान से भक्ति नहीं कर रहा है उसको फिर भी चिंतन होता रहेगा माया का। ठीक है, तो इसलिए अनन्य भक्ति का यहां पर वर्णन किया गया है। वो एक्चुअली पत्नी जो है पति को छोड़कर रह भी नहीं पाएगी, ना वो पति जो है पत्नी छोड़कर रह पाएगा। ठीक है कि नहीं। प्रसंगम अजरम पाशम, ये बड़ा फेविकोल का जोड़ है। ठीक है, इसलिए जहां भी आप लोग बताते हैं तो उनको एकदम से नहीं बताना चाहिए कि छोड़ दो, ऐसा पति है छोड़ दो इसको, ऐसी पत्नी है छोड़ दो इसको, छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। छुड़वा तो दिया लेकिन कृष्ण से जुड़वा नहीं पाए, फायदा नहीं है फिर। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्। गुरु तब गुरु नहीं बनना चाहिए अगर छुड़ाने के बाद आप जुड़ा नहीं पा रहे हैं तो, तब तक छुड़ाइए मत, साथ में करो, कोई बात नहीं करो, ऐसे करके करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम राम राम।